జయ గురుదేవం జయ గురుదే
జయ గురుదే
ఓం అశరణ శరణ శరణ ప్రభులే రాఖహి జో కోప విధాతా
గురు రాఖహి జో కోప విధాతా
గురు రూఠే నహీ కో జగ త్రాతా
గురు రూఠే నహీ కో జగ త్రాతా
గురు కే వచన ప్రతీతన జాయి
గురు కే వచన ప్రతీతన
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई
ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। कबीर साहब पढ़े लिखे तो नहीं थे, मर्सी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों झुका महात्मा, कबीर मुखे ही जनाई बात, कागज कलम तो छुआ ही नहीं, चारों युग का महात्म्य मुख से जना दिया। गुरु महाराज कहे वो शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मवा अंग्रेजी भी जानती है, कोई इंग्लिश में बात करे हम बता देंगे, ये जो बोल रहा है इसके मनोगत भाव क्या है। हमें भगवान पढ़ाया करते हैं और ईश्वर पद में जो भगवान पढ़ाते हैं वही पढ़ाई कामयाब होती है, बाहर की पढ़ाई से मतलब भी नहीं। तो ईश्वर पद में जिसका नाम है भजन की जागृति, हमारे गुरु महाराज कहें हो हमारा भजन करने का मन नहीं था, कल्पना भी नहीं थी कि हम भजन भी करेंगे, भजन भी किया जाता है। 3 दिन स्कूल गए, 5 साल की उम्र में माताजी ले गई स्कूल, दुलारा लड़का होता तो माई छोड़ती नहीं, साथ साथ 3 दिन गई। पंडित जी ने किसी भूल पर 2 चटकना मार दिया, अब मचल के लड़का लगा रोने, माँ ने उठा लिया, भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। तो शिक्षा का पाठ तो जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत, तो 5 साल की उम्र में ही लो लग गई दंड बैठक और पहलवानी की। गांव में 12 अखाड़े थे, उस समय का माहौल ही वही था क्षेत्र का, तो देखा देखी लगे दंड बैठक, पीली मट्टी ढूंढ के ले आवे, चूल्हे के पास खड़े होके दंड बैठक लगावे, जब पसीना हो जाए तो पीली मट्टी गर्दन में मस्तिष्क में हाथों में लगा के और बस घुमा करे गलियों में। जो पहलवानों के उस्ताद थे उनकी निगाह पड़ गई, बोले लड़के की लगन तो अच्छी है, पीठ ठोक ठोक के लगे सिखाने, बढ़िया पहलवान हो गए। 28 साल की उम्र तक कभी कुश्ती हारे ही नहीं, कुश्ती तो लगती रहती है पहलवानों की। अरमान थे कि गामा आ रहा तम कोई स्टेट में हाथ मिला के देखूं उसमें हमें अंतर कितना है। महाराज को ये भान नहीं था कि वो हमें पटक देगा, नशा था। बाजार जा रहे थे सामान खरीदने, महाराज के हो पर्याप्त पैसा रहा हमारे पास, हम बोले महाराज कितना रहा, बोले 3 पैसा, हो सौदा कीने जात रहा हूं। एक संत बाजू से निकले, आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन करो, सिर चकरा गया, पुलिया का सहारा लिया, बैठ गए, संत दो दौड़ में थे, झंडा लेके हाथ में, पतला सा झंडा, ओझों वाला झंडा, निकल गए। 60-70 साल करीब उम्र थी उनकी, दुबले पतले। फिर चेत हुआ तब दो किसान वहां खुरपी से निरा रहे थे धान, उनसे पूछा, आप लोगों ने कुछ सुना? बोली, यहां सुनने की कौन बात थी, आप भी मौन हम भी मौन। तब सोचा, आवाज तो इतनी बुलंद थी कि आधा किलोमीटर में तो भली प्रकार सुन लेना चाहिए था सबको, पास में बैठे इनको नहीं सुनाई पड़ी। जरूर कोई देवी आवाज है, कुछ भी हो संत को भोजन कराना चाहिए। लगाया दौड़, दिन भर ढूंढा, शाम को टकराए वो, भोजन कराया। और एक कुटिला औरत ने एक संदेश सा दिया, एक मनचली औरत का, बोले, आप चाहो तो जन्म भर संबंध रख सकते हैं। महाराज के हम छिनरा नहीं रहे, लेकिन उसके पीछे गांव के रईस लड़के घूम रहे थे, बोले भला हमें पसंद तो किया, बगैर सोचे बिचारे उधर जा रहे थे। तो सोचा, मैं कभी भयभीत हो रहा हूँ, कभी आगे बढ़ रहा हूँ, कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा हूँ। जहां मन में ये विचार आया तो बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। सिर चकरा गया, मन मन भर के पांव हो गए, मस्तिष्क सुन्न हो गया, जैसे है ही नहीं, बुत बन के खड़े रहे। अंधेर धुप बगीचे के बीच में, उसमें से काले काले लोग आगे बढ़ने लगे पकड़ के मार डालने के लिए। आधा घंटा में जब पांव में कुछ हरकत आई, रोए गिरे, बगैर सोचे बिचारे वापस घूम गए। जहां बगीचे के बाहर निकले, पुने आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। गए गुरु महाराज पा गए। महाराज कह हो, उन बाबा को हमने 50 बार पहले भी रोड में चलते हुए देखा, लोग कहा करें पगला जा रहा है। मैं भी अपने मन में जानता था कि ये पागल हैं, किंतु भगवान ने कहा कि गुरु महाराज, जब गुरु ही महाराज है तो बाकी क्या। निकल गए भजन में, घर नहीं गए, एक झाड़ी में बैठ गए। 6 दिन बाद घर वाला पता पाए, जा रहे थे काम की ओर, निकल गए राम की ओर। ये काम क्रोध तन में नहीं होते, मन में होते हैं, संकल्प में होते, संकल्प की दिशा बदल गई। फिर आदेश मिला भगवान का, विचरण में निकल गए। तो घर हम छोड़ना ही नहीं चाहते थे, साधु होना ही नहीं चाहते थे, भगवान कान पकड़ के हमको साधु बना दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, शिथिल प्रयत्न वाला साधक भी स्वल्प अभ्यास गीतों की साधना से पार लग गया, श्वास के रहते रहते 2 कदम चलते पार लग गया, गीतों की साधना समझ कर मरने से 10 दिन पहले ही श्रद्धा स्थिर हो गई भगवान में, कुछ ओम ओम जपते पार लग गया। समर्पण के साथ बीजारोपण तो हो गया, श्रद्धा का बीज, समर्पण का बीज, साधना जागृत भर हो जाए तो अगले जन्म में यदि 2 कदम चल चुके हो तो 3रा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। अगले जन्म में आकंठ विषयों में डूबा हुआ होने पर भी अनायासी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लोगे, जहां साधना छूटी थी वहीं से आरंभ हो जाएगा और वहां पहुंच जाओगे जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, मेरा निस्वरूप है। महाराज के 4 महीने में भजन जागृत हो गया। गुरु महाराज ने भजन तो पहले शुरुआत में ही बता दिया था, ऐसे श्वास का जाप करो, ऐसे ध्यान धरो, ऐसे ब्रह्म विद्या जपो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, फिर भी भजन से कोई मतलब नहीं। 4 महीने में भजन हृदय से जागृत हो गया, भगवान उठा के बैठाने लगे, उठ बैठ कर भजन, ऐसे भजन कर, भजन पढ़ाने लगे, सिखाने लगे, जगाने लगे, बैठाने लगे, कोई छोटे बच्चे को उठा के बैठावे चलावे उंगली पकड़ के, और भजन जागृत हो गया। महाराज के और शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मा अंग्रेजी हो जानत। कभी कभी रामायण मंगवावे, देख मैं रह और मैं जानत, खोले किताब उंगली घुमाते घुमाते ले जाए, बोले देख ही रे लिखा है, चाहे वो रावण लिखा हो, देख ही मैं लिखा है, भले ही मंदोदरी लिखा हो, मैं रे और मैं पढ़ा हूं रे। पढ़ाई का तो ये हाल, लेकिन जब बाणी निकले तो बड़े बड़े प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन जब पहुंचे, उनकी विद्या का कोई उपयोग नहीं। महाराज कहे हो हम कहीं आंखी की देखी, तुम कहो कागज की लेखी, हमार तुहार मनवा एक कैसे हुई। तो ईश्वर पथ में ये जो लिखा पढ़ा ये काम नहीं देता, ये आधी दूरी तक है, भजन की जागृति तक ही है। जागृति के पश्चात वो वेद अपुरुषी वाणी रोज ही उतरती है पुस्तक, और साधु उसी को पढ़ता और चलता है। गुरु महाराज विचरण करते हुए पहुंच गए हरिद्वार, और हरिद्वार से चले सोचा चली बद्रीनाथ की ओर ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आगे बढ़ गए, पहाड़ी चढ़ गए बद्रीनाथ की ओर। पहाड़ चढ़े ही थे, बढ़िया शीतलहरी हवा चल रही थी, बर्फीली। पांच महात्मा बैठ के चिलम बना रहे थे गांजा। महाराज को देखा तो बोले आइए संत जी, आप भी दम लगाइए। महाराज भी कहे हम भी बैठ गए, सोचा ठंडी है दम लगा लेंगे तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी। महाराज के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, केवल एक कमंडल, पतली सी छड़ी, उस गांजे में संख्या मिला रखा था। संख्या भी एक नशीला पदार्थ होता है। महात्मा लोग गांजा तैयार होने पर खुद नहीं पीते, वो भी चिलम की भी एक मर्यादा होती है, दूसरे की ओर बढ़ा देंगे, लीजिए संत जी चेताइए। तो एक बाबा पीने के लिए बड़े आतुर थे, विकल थे, उन्होंने हाथ बढ़ाया, चिलम ले लिया और खींचने लगे, सुर सुर सुर, जब लपट उठने लगी चिलम में तो जोर से खींचा, श्वास नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर, और गिर गए, चिलम इधर और बाबा जी इधर, और मर गए। सब बाबा उठ के भागे, इतना अनायास भागे। महाराज कहते हैं हम भी भागे बगैर सोचे बिचारे, 15 कदम भागने के बाद हम खड़े हो गए। हमने विचार किया कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, ये क्यों भाग रहे हैं। घूम के देखा, बोले ओ ये मर गया है, इसलिए डर की वजह से भाग रहे हैं। तब खड़े हो गए, साधु हो कि भाड़ हो, मर गया तो क्या हो गया, हम पीते हम मर जाते, तुम पीते तुम मर जाते, ये कोई पाप है। अरे थोड़ी संख्या की मात्रा ज्यादा हो गई और क्या हो गया। रुको, अन्यथा रिपोर्ट करके सबको बंद करवा दूंगा। सब लौट आए, पास ही में गांव था पहाड़ी, सबको बुलाया, पंचायतनामा लिखवाया, उन महात्मा को रफा दफा किया, अंत्येष्टि करवाया। फिर वो 4 महात्मा बचे थे वो आगे बढ़ गए बद्रीनाथ की ओर, और महाराज ने उनका साथ छोड़ दिया और बोले सुबह सुबह अच्छा विघ्न पड़ गया। एक सड़क दिखाई पड़ी, उस सड़क को पकड़ लिया, जिधर जाओ संग दोष। सोचा सड़क है तो कहीं गांव ग्राम भी होगा, वो फॉरेस्ट का रास्ता था वन विभाग का। चलते ही चले गए, सुबह 6-7 बजे के चले हुए, शाम को 6 बजे जंगल और ही घना होता चला गया, एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंच गए, बैठ गए। तब भगवान ने कहा, बैठना चाहते थे यहीं बैठो, यहां तुम्हें भगवत स्वरूप की प्राप्ति होगी, सारी स्थितियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, तुम्हारे द्वारा जनता का कल्याण होगा भरपूर, और यहाँ पत्ते पत्ते में लट्टू लग जाएंगे, तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ तुम्हारा आश्रम बन जाएगा, तुम यहीं रहो। महाराज बहुत खुश थे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन भगवान ने बढ़िया सगुर मिल रहा था, बोले बैठे रहो। हाथियों की ताजी लीद पड़ी हुई थी चारों तरफ, देहरादून में हाथी तब भी थे आज भी हैं जंगल में। चौथे दिन भगवान ने ब्रह्म बेला में कहा, ने पानी पिए न कहो न खाना खाने को, कुछ नहीं, ठीक है बैठे रहो, यथावत सब ठीक होगा। आज एक सिपाही दूध लेकर आएगा, दूध पीना मत, इस बात का ध्यान रखना, और सब पूर्ववत वैसे ही होगा। सुन लिया, भजन में बैठे थे, भूल भी गए थोड़ा बहुत। इतने में एक सिपाही दूध लेके पहुंचा कटोरे में, साफ बोले भगवान दूध सेवन कर ले, मैं इसी वन विभाग का सिपाही हूँ, चार दिन से बराबर आप पर दृष्टि गड़ाए हुए हूँ, आप उठ के कहीं नहीं गए, जैसे कि तैसे बैठे हुए हैं, कृपया दूध सेवन कर ले, मैं बराबर सेवा करता रहूंगा, आप यहीं विराजे। तब महाराज को याद आया कि भगवान ने कहा है तुम दूध आएगा, सिपाही लाएगा, पीना मत, और सब ठीक है, यथावत होगा। उससे कैसे कहेंगे भगवान माना करते हैं, कोई विश्वास करेगा कि भगवान भी बातें करते हैं? तो बोले देख, चार छह महीने बाद तुम जो भी लाओगे मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमारी चिंता छोड़, तुम जाओ दूध लेके चले जाओ, बाद में कभी आओगे तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लूंगा, अभी मैं भूखा भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमारा व्रत नियम ऐसा ही है, यहां से चले जाओ। वो अटबट बैठा बैठा कुछ न कुछ बोला करे, महाराज हम लोग इतने पापी हैं, तुच्छ सेवा भी आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम गरीबों का उद्धार कैसे होगा, हम संसारी जीव हैं, हम लोगों के पास दृष्टि तो है नहीं, ने कोई संतों की पहचानी है, भगवान कृपा करें, हम लोग जड़ जीव हैं। अटबट अटबट कुछ न कुछ बोलता ही चला गया एक घंटा, हमारा चुप शांत। उससे जीव छुड़ाने के लिए महाराज झुंझलाहट में उसका कटोरा उठाया और पी गए। बोले ससुरा ने चुप्पे रहते न चलाऊ जाते, ने चुप रहता है ने चला ही जाता है, और झुंझलाहट हम पी गए। वो सादर प्रणाम किया, कटोरा लेके अभी थोड़ी दूर गया होगा तो भगवान नाराज हो गए, बोले क्यों रे, मना किया था दूध मत पीना, पी लिया, अब यहां कुछ नहीं होगा, भागो यहां से, तुम्हारे में रहने की क्षमता ही नहीं है, तुम यहां नहीं रह सकते, अभी बिल्कुल क्षमता नहीं है, जो मना किया फिर भी पी लिया। महाराज क्या हो, दो पौवा दूध था, पेट भर भोजन भी नहीं मिला, तो रेख लांग सिए बाहर जाई, विदिवस कर्म काल कठिनाई। भगवान जो सीमा रेखा निश्चित कर ले, उस रेखा का जहां उल्लंघन किया तो काल की करालता है, साधक सोचता मैं बढ़िया जगह जा रहा हूं, वो तीर की तरह सीधा काल के मुंह में जा रहा है, तो गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नरका हूं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। तो भगवान ऐसे ही बोलते हैं जैसे हम तुम बैठ के बातें करें, घंटों करें और कर्म ने टूटे, मन बस हो ही तबही जब प्रेरक प्रभु वर्जे, इसी का नाम है भजन की जागृति। लेकिन ये आवाज सब नहीं तो सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही जीनी जीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में। कबीर का एक भजन है इसी आशय का, ये आवाज सुनता है गुरु ज्ञानी, पहले पूरा भजन सुन ले फिर अर्थ बताया जाएगा। तो पाही लिया ये, पाही लिया ये नाद बिंदु से, पछे जमिया पानी सब घट पूरन बोली रहा है, अलख पुरुष निर्वाणी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही ओ झीनी झीनी। भगवान के घर से तो निर्दोष निर्मल ही आया था, ये एक लाइन बीच में चेतावनी के रूप में दे दिया। तो वहां से आया पता लिखाया, वहां से आया पता लिखाया, कृष्णा तो ने बुझाई अमृत छाड़ी विषय को ध्यावे, उल्टी फांस फसानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही ओ झीनी झीनी। गगन मंडल में गोबियानी, गगन मंडल में गाय भी आ गई आकाश में। तो गगन मंडल में गोबियानी, माही में दही जमाई जी, माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत व्यपरानी हो जी की। आकाश में कई चमत्कार देखने को मिले, गगन मंडल में एक निवास स्थान दिखाई पड़ा, बिना धरती के बगैर सरोवर के पानी दिखाई पड़ गया, गगन मंडल में एक उजेला दिखाई पड़ गया। तो विनु धरती एक मंडल दिशे, बिन सरोवर जो पानी गगन मंडल में हुई उजियाला, बोले गुरु मुख वाणी हो जी। लेकिन वह साधना किस प्रकार की होती है, भजन की विधि क्या। ओ हम सो हम बाजा बाजे, त्रिकुटी धाम सुहानी जी, इड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, शून्य ध्वजा फहरानी हो जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जानी अगम के बानी रे, दिन अरु रैन नजर भर देखे, अजर अमर वो निशानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में ये आवाज, जो आकाशीय शब्द है गुरु सुनता है। गुरुओं की तो कतार लगी, यहां से बनारस तक कम 10,000 गुरु तो मिली जाएंगे, बनारस में जाओ तो हर पंडा गुरु और बतासा गुरु, घर में जो लड़का जन्म गया हर गुरु, यहाँ तो गुरुओं की कतार लगी है। ज्ञानी गुरु, ज्ञानी यहाँ तो पाठ पढ़ लिया तो गुरु, लेकिन भगवत पथ में ही गुरु एक स्थिति का नाम है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम यज्ञानम यद तो नितः। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उनके संरक्षण में चलते हुए क्रमशः उत्कर्ष होते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी, ज्ञान है और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। पहले तो हृदय में आत्मा सबके अंदर विद्यमान है, ईश्वर है सर्वभूतानाम, हृदय शेरजुन तिष्ठति, अर्जुन वो ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। अर्जुन, आत्मा ही अविनाशी है, परम तत्व है, सबके हृदय के अंतराल में जिसका निवास है, तो हृदय में जो आत्मा परिशुद्ध है वो जागृत होके मार्गदर्शन करे। जब आत्मा मार्गदर्शन करने लगी तो आत्मा कहती क्या है, भगवान कहते क्या है, भगवान चाहते क्या है, इस आदेश का पालन समझते जाओ और चलते जाओ। यहां से भजन की शुरुआत, वो जो कहते हैं समझो और चलते जाओ, यहां से ज्ञान की शुरुआत, ज्ञान की जागृति, इनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति, पूर्ण ज्ञान है और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है, जो इसे प्राप्त है वो ज्ञानी गुरु। तो सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आकाश में, आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल, ये संसार का क्रम है। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिति अति अधम शरीरा, ये तो पंच महाभूत है, सृष्टि का अनंत काल से सृष्टि का सृजन चल ही रहा है, ये अनादि है। लेकिन योग पथ में ये आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को, चित तो इतना बड़ा जितना संसार, तुलसीदास के चिद विलास जग बुझत बुझत बुझे, चित का पटपसार ही जगत है। लेकिन ये बात समझ में आते आते, अभ्यास करते करते एक दिन समझ में आ जाता, जिस चित जब ठहराव लेता है तब तो ये भटकने वाला चित सिमट के, वायु से तेज चलने वाला मन सिमट के शांत स्थिर हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है। भले बुरे संकल्प जब शांत हो जाते हैं, बांस की तरह चित्तवृत्ति जब स्थिर हो जाती है, इसका नाम है चिदाकाश। चित जब शून्य में स्थिर हो जाता है, मन के अंतराल में न भले उद्वेग उठते हैं न बुरे, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं, श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो गई, इसका नाम है चिदाकाश। जास मन की दृष्टि का नाम है सूरत, ये सूरत एकदम बांस की तरह स्थिर खड़ी हो गई। चित जिस क्षण आकाशवत हुआ, एक पल के लिए हुआ, तो प्रकृति से संबंध टूट जाता है, माया से परमात्मा से जुड़ जाता है, तो फिर वो आकाश में प्रभु की आवाज जागृत हो जाती है, श्रद्धा से संबंध जुड़ जाती तब भी जागृत हो जाती है, और उस आवाज को सुनता है गुरु ज्ञानी। संपूर्ण आवाज को तो गुरु ज्ञानी सुनता है, लेकिन आप हम सब में जागृति किसी सदगुरु के द्वारा टूटी फूटी सेवा करने से, उनके निर्देशन में टूटी फूटी साधना करने से ये भजन जागृत हो जाया करता है। ये न लिखने में आता है, न वाणी से कहने में आता है, किसी अनुभवी महापुरुष के शरण सानिध्य में टूटी फूटी सेवा करने से, टूटी फूटी साधना करने से ही भजन जागृत हो जाया करता, वो प्रश्न अलग। तो सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, जहां सूरत शून्य में स्थिर हुई, एक पल रुकी, तुरंत वो आकाशीय शब्द प्रसारित हो गया। सुनता है संपूर्ण तो गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही, जीनी जीनी, आहिस्ते आहिस्ते जीनी जीनी, मधुर मधुर आवाज वो हो रही है, वो निरंतर हो रही है। इस आवाज तक पहुंचने के लिए अभ्यास जरूरी है। तो पाही लिया ये नाद बिंदु से, पा माने प्राप्त करना, पाना ये पूर्ण शब्द है। पाही लिया ये नाद बिंदु से, पाही लिया आखिर श्रम करते करते प्राप्त कर ही तो लिया। क्या प्राप्त कर लिया? नाद माने ध्वनि, कहां से प्राप्त किया? बिंदु से। जब सूरत बिंदु पे केंद्र पर एकाग्र हो गई, सुन पर सूरत टिकी, तो प्रकृति से संबंध टूटा और परमात्मा से जुड़ी सूरत, तो ये ध्वनि प्रसारित हो गई। पाही लिया ये नाद माने ध्वनि, पाही लिया ये नाद बिंदु से। विवेकानंद अमेरिका जब गए धर्म सभा को संबोधित करने, एक महीने में जहाज पहुंचता था, उस समय यातायात का साधन समुद्री जहाज ही था। 15 दिन चलते चलते घबरा गए, इन लोगों की बोली भाषा भी तो समझ में नहीं आती, मैं वहां जाके क्या करूंगा। तब रामकृष्ण परमहंस देव गुरु महाराज जहाज के ऊपर उड़ते हुए दिखाई पड़े और बोले, तू क्यों घबराता, मैं भी तो चल रहा हूं तुम्हारे साथ। बड़ा सांस बंधा, सब घबराहट दूर, पहुंच तो गए अमेरिका, उतरे तो झोला झंडी गायब, सब बिस्तर कागजाज वहां पहुंचने के वो सब गायब। किसी तरीके से रगड़त रगड़त पहुंच तो गए। स्टेज पर खड़े हुए तो वहां जो प्रबंधक थे उन्होंने देखा, ये गुलाम देश का पादड़ी, जानता भी क्या होगा। सबको तो प्रश्न मिलता था बोलने के लिए, इस विषय पर बोलो। बोली गुलाम देश का पादरी, इसको कोई प्रश्न ही मत दो, सुनना लगा दिया, जीरो। विवेकानंद को पसीना छूटने लगा, उन्हें रामकृष्ण परमहंस देव की बाणी गूंजी, अरे बोल बोल, मैं बोलूंगा ना। तब साहस करके बोलना शुरू किया, अमेरिका निवासी भाइयों तथा बहनों, वो पुरानी संस्कृति का शब्द जहां विवेकानंद जी के मुंह से निकला, उछल पड़े सब। 5 मिनट तक तालियां बजती चली गई, और वो खोई हुई संस्कृति उनके सामने पुनः लौट आई थी। पहले वो भी भारतीय ही थे, वहां के मूल निवासी आज भी अपने को इंडियन कहने में गौरव महसूस कर रहे हैं। पातवाल लोक वही था, तो फिर माया संस्कृति कहलाती है। फिर बोलना शुरू किया, जीरो इज गॉड। मन तो इतना बड़ा जितना संसार, तुलसीदास के चिद विलास जग बुझत बुझत बुझे, चित का पट पसार ही जगत है। उतना ही संसार जितना चित आपका विकृत अथवा संयत है। लेकिन ये योग भजन के सही साधना के दौड़ में पढ़कर संयमित होते होते जब संयम सद जाता है, तत्र प्रति एकतांता ध्यानम, चित को जहां लगाया जाए वृत्ति एक तार चलने लगती है, उसी का नाम है ध्यान। ध्यान जब समाधि में आता है, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जिस लक्ष्य का चिंतन करता है वो लक्ष्य मात्र का आभास रहे, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, इसी का नाम समाधि है। जब लक्ष्य मात्र का आभास रहता है, चित्त का निज स्वरूप शून्य जीरो, एकदम प्रकृति शून्य हो जाए लक्ष्य मात्र का आभास, उस समय प्रकृति का संबंध टूट जाता है, परमात्मा ही शेष बच रहता है। वो जिन विभूतियों से युक्त है, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला, वो सब वहां प्रसारित हो जाता है। ऐसे निरोध चित्त में वहां भगवान ही मात्र शेष रहता है। विधिवत समझाया, जीरो इज गॉड। फिर उंगली उठने लगी, 5 मिनट समय लगा था, लोगों ने उंगली उठाया, 2 मिनट और, 1 मिनट और। 21 मिनट बोले, दूसरे दिन एक घंटा, तीसरे दिन विवेकानंद जब तक बोले समय फ्री। इसलिए तो पा ही लिया माने अभ्यास करते करते एक समय प्राप्त कर ही तो लिया। क्या पा लिया? वो आकाशीय ध्वनि प्राप्त कर लिया। कब पाया? जब सूर्य जरा सुन में स्पर्श किया तब पा ही लिया ये नाद बिंदु से। जहां सूर्य सुन में थोड़ी एक पल रुकी तो ध्वनि प्रसारित हो गई। जो गुरु महाराज ने जो सुन में सुन रहे थे जिनी जिनी आवाज प्रसारित हो गई। जहां ध्वनि प्रसारित हुई तो पीछे जमया पानी, इसके साथ ही संसार समुद्र की जो लहरें उठ रही थी, विषय रूपी बारी जो चल रहा था उसमें जमावट आ गई। वासना की लहर जो उठ रही थी वो शांत हो गई, उसमें जमावट आ गई। भगवान कृष्ण कहते हैं योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जिते इंद्रिय है। परमात्मा के मिलन का नाम योग, योग से युक्त है विशुद्ध आत्मा, विशेष रूप से शुद्ध अंतःकरण वाला है, विशेष रूप से जीती हुई इंद्रिय है, उसके लिए बस संसार का विषय रूपी बारी एकदम शांत हो जाता है। क्योंकि सभी प्राणियों के अंतराल में जो आत्मा का संचार है उसके मूल परमात्मा में वो स्थित है। पीछे जमे या पानी, संसार रूपी समुद्र का विषय रूपी बारी उस आवाज के साथ ही जमावट ले जम जाता है। भला आवाज सुनाई तो ध्वनि पड़ी, वो ध्वनि थी किसकी? परमात्मा की। सब घट पूरन बोल रहा है अलख पुरुष निर्वाणी हो जी। हर घट में परिपूर्ण है, हमी को सुनाई पड़ी, गुरु ज्ञानी को सुनाई पड़ता है, इतनी बात नहीं, हर हृदय में परिपूर्ण बोल रहा है। अलग पुरुष से वाणी का विषय नहीं है, अचिंत्य अगोचर है, सभी प्राप्त कर सकते हैं। सुन लो जी, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में। महापुरुष उसी वाणी को सुनता है, उसी के सहारे अपनी साधना की मंजिल तय करता है। अगले पद में एक चेतावनी देते हैं, तुम लोग वहां से तो निर्मल आया है, निर्दोष ही आए थे। कुछ भजनों में महापुरुषों ने कहा है गर्भवास में कॉल किया था, वादा किया था जन्मूंगा तो प्रभु इस असह्य वेदना से छूटने के लिए मैं आपका भजन अवश्य करूंगा। लेकिन यहाँ आते ही माया ने जाल फैला दिया। यहाँ जो तैयार बैठे थे बचवा हुई तो मैं मिठाई बांटू, बचवा हुई तो ये सिखाऊ वो सिखाऊ। वहां से आया पता लिखाया तृष्णा तो ने बुझाई। जब जन्म होते ही नामकरण संस्कार हुआ, पता बोले पढ़ बताइए गुरुजी राशि का नाम क्या है, तो फिर राशि का नाम पड़ गया। मिला भगवान राम के राशि का नाम कुछ था ही नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा ये ग्रह दशाओं से परे है, कोई ग्रह दशा के पकड़ से परे है, ये अनंत है असीम है। कृष्ण के भी कुछ ऐसे ही नाम पड़े थे, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी शो सुख धाम राम यसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। कृष्ण के भी कुछ राशि के नाम ऐसे ही पड़े। ये जो पता लिखाया नामकरण संस्कार के साथ ही महापुरुषों के नाम भी उनकी योग्यता के अनुसार होता रहा। अगस्त का नाम था अगस्त, पाप का दायरा उनके सामने से अस्त हो चुका था। उनके शिष्य थे सुतीक्षण, शुभ के पीछे तीक्ष्ण गति से चलने वाले थे इसलिए सुतीक्षण। आजकल के अनुसार गुरुजी का नाम फलाने नंद, तो चेला का नाम भी परम पूर्णानंद। नाम एक परंपरा हो गई। ऐसे ही वहां से आया पता लिखाया, जहां नामकरण संस्कार हुआ तो तृष्णा तो ने बुझाई, तुरंत तृष्णा वाला पाठ उसको मासूम बच्चा वो क्या जाने, तृष्णा ही चारों तरफ से समझाना शुरू कर दिया, तुम किस कुल खानदान के हो, तुम्हारे पूर्वज इतने विद्वान थे, धोती धो के आकाश में फेंक दे तो सूख जाती थी तब पृथ्वी में आती थी, ऐसे विद्वान थे, तुम उस कुल खानदान के हो, क्या नाम डुबा दोगे, पढ़ो। सिर कटने के बाद भी तब तलवार हाथ से गिरती थी, जब फतेह हो जाती रही लड़ो। दशरथ से कहा करें वशिष्ठ जी राजन, बोले 400,000 गाय दान करो राजन, अब तुमने अपने कुल गोत्र के अनुसार ही कदम उठाया है, पूर्वजों ने बड़े बड़े दान दिए थे, अब कुल गोत्र की दुहाई देख के उनको आगे बढ़ाना। कृष्णा तोने बुझाई, कृष्णा वाला पाठ उसको समझाना बुझाना शुरू किया, अब बेचारे को सिखाया वही गया था, आया तो था भजन करने, अमृत तत्व एक आत्मा, आत्मपद को छोड़ के अमृत छाड़ी विषय को ध्यावे, और विषय की ओर विषय को ध्यावे, कदाचित पूजा करने जाएगा तब भी प्रार्थना बदले में वही चाहेगा, विषय को ध्यावे उल्टी फांस फसानी, उल्टी गले में फांसी फंसा लिया, वो फांसी छुड़ाने के लिए दुर्लभतन मिला था, मानस में कहते हैं नर तन भव बारिद कहूं बेरो सनमुख मरुति अनुग्रह मेरो, मानव तन भव सिंधु से पार होने के लिए जहाज है, मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है, सदगुरु कर्णधार है केवट है, न भव सिंधु से पार करने के लिए समर्थ केवट कर्णधार है, पार लगाने वाले कप्तान हैं, ये दुर्लभ साज है, कदाचित सुलभ हो गया, और जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, शोकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाई, ऐसा दुर्लभ साज पाकर भी जो भव सिंधु नहीं पार होता वो कृत निंदक करने से कतराता है, कल पर टालता है और अपनी आत्मा का हत्यारा है, तो उल्टी फांस फसानी, आया था छुड़ाने और उल्टी फांस फंसा दिया, अपने हाथों भर के रसरिया अपनी गटैया के फांसा धोबिया जलबित मर्द प्यासा, किंतु जो भजन की लाइन पकड़ लिया तब क्या मिला, तो गगन मंडल में गोबियानी माही पे दही जमाई जी, जो सूरत आकाशवत हो गई, भजन का स्तर इतना उन्नत हुआ, सांस आई तोम गई तोम, चित्त वृत्ति सिमट के श्वास में समाहित हो गई, श्वास खड़ी हो गई नाम जपते जपते, आकाश कहते हैं पोल को शून्य में स्थिर अदर में टिक गई, तो गो बियानी माना कि गाय नाम का एक पशु है, लेकिन योग साधना भक्ति पथ में गो माने मन सहित इंद्रिय, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने हूं भाई, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन जाता है सो सब माया जाने हूं भाई, बाहर से देखा जाए गायें गो गोचर गाय और गोचर भूमि जहां तक है वहां तक मन जाता उतनी माया है, जहां तक गाय चरती उतने ही का नाम माया, जीती पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु कपा वही, पवन को जीत कर गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु कपा वही, क्या करें गाय के साथ कौन सा हम व्यवहार करें, उसका दूध सुखा दे तब भगवान ध्यान में आएंगे या खून ही सुखा डाले तब भगवान ध्यान में आएंगे, कौन सा व्यवहार करें गाय के साथ, माना कि गाय नाम का पशु है, गो माने मन सहित इंद्रियें, ये संकल्प विकल्प की लहर है, चित्त में जो एक वायुमंडल बवंडर चलता है, इस पवन को जीतो, श्वास पर श्वास का जजन करते हुए श्वास की गति स्थिर हो जा, ये वायुमंडल शांत हो जाए, श्वास सम टिक जाए, सूरत भगवान में लोल लग जाए श्वास में, पवन जीतो गो माने मन सहित इंद्रिय संयमित हो जाए, विषयों से सिमट कर जहां जीतने में आई तो मुनि ध्यान कब अंक पावही। अब आंखें बाहर देखती नहीं भीतर देखने लगी, कान बाहर सुनते नहीं भीतर भगवान की आवाज वाणी सुन के उन्हीं के अनुसार चलने लगी तो भगवान का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा, सूरत टिक जाएगी, कबहुक पावही। ये थोड़ा अभ्यास करते करते ही स्थिति मिलती है, कबहुक माने थोड़ा अभ्यास के परिणाम में मिलती है। गो माने मन से इंद्रिय संयम के साथ। नचिकेता उदालक ऋषि के बेटे थे, शिष्य थे। उदालक ऋषि ने 1,00,000 गाय अंतिम चारा चुन चुकी थी, अंतिम गोबर कर चुकी थी, अंतिम दूध दे चुकी थी, अंतिम श्वास ले चुकी थी, ऐसी गाय विप्र को दान दिया। नचिकेता बोले पिताश्री हमें भी दान दे दो किसी को। तो बोले जाओ मैं यमराज को देता हूं। यमराज घबराए, बोले तुम ऐसा करो राज ले लो, तुम्हारे पिता का खोया हुआ राज वापस देता हूं ले लो। बोले नहीं भगवान, केवल आत्मदर्शन स्पर्श और आत्मज्ञान और स्थिति चाहिए। बोले उसके लिए न परेशान हो, जो चाहो मांग लो। बोले केवल वो चाहिए। पहले बहुत चकमा दिया, फिर आत्मदर्शन स्पर्श और स्थिति दिया। ये बताओ ब्राह्मण जाके चमड़े की कारखाना खोलेगा, गोबर उर्वरक भी नहीं देगी, दूध भी नहीं देगी, अंतिम दूध दे चुकी यहाँ पर, अंतिम गोबर कर चुकी यहाँ पर, अंतिम घास खा चुकी यहाँ पर, क्या करेगा ले जाके? वो तो मरना ही बाकी है, क्या चमड़े की दुकान खोलेगा? वास्तव में गोमाने मन से इंद्रियां भी प्रमाने जो ब्रह्म से संयुक्त थे, ब्रह्म स्थित थे, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, ऐसे महापुरुष को समर्पण कर देते हैं। कब वो महापुरुष को संपूर्ण समर्पण? तब है जब चित्त की लाखों प्रवृत्तियां सिमट के अंतिम परिणाम दे चुकी हो, अंतिम विषय रूपी रस खा के अब खाने की जगह न रह गई हो और अंतिम सृष्टि में श्वास ले चुकी हो, तब वो समर्पित सदगुरु के प्रति हो गई। तो सब का नियमन करने वाला धर्म भगवान का वो स्वरूप पहले देगा, ये लो वो लो ये लो, सब से कुछ भी इच्छा नहीं रह गई तो अपना दर्शन स्पर्श और स्थिति दे देते हैं। नचिकेता न चित्त करता, चित्त जब न करता हो गया तो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, विलय हो जाता है। न कि कोई ये गायें ऐसी, कोई ऐसी भी गाय होती है क्या? भजन करते करते नंदनी, जब भजन में आनंद मिलने लगा तो जो भी कामना करोगे मिलेगी। यही इंद्रियां संयम सज जाता तो आनंद प्रदायिनी होती है, और वो आनंद विषय में तो है नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर तेत्रे लोक सुपासी, जो आनंद के समुद्र है, सहज सुख की राशि है, उस सहज सुख राशि में से एक बूंद जिस पर छिड़क दे वो तीनों लोकों में सुपास पा जाता है, वो है केवल एक भगवान राम। जब वो आनंद की एक बूंद मिलने लगती है, कब? जब इंद्रियों का संयम इस ऊंचाई पे सद जाता है, तब यही इंद्रिय नंदनी कहलाती है। और स्तर उठा तो कामधेनु, जो इच्छा करिए हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो मन में इच्छा करोगे वो भी सर्वित होने लगती है भगवान। ऐसी स्थिति में वो बाहर कोई नंदनी नहीं, ये इंद्रियों का संयम का स्तर सद्धता जाता है, पहले वो नंदनी होती है, फिर कामधेनु, उनके द्वारा जो कामना पूर्ति होती है भगवान के द्वारा होती है। इसलिए सुनो सेवक, सुरतरु सुरधेनु विधि हरि हर बंदित पद रेनु। भगवान ही कल्प वृक्ष, भगवान ही कामधेनु है, वो कामना की पूर्ति जो होती इंद्रिय शास्त्र सदने पर भगवान के द्वारा होती है। इसलिए भगवान ही कामधेनु ने की कोई गाय, ये तो पहले देने लेने की वस्तु गाय थी, विनिमय की वस्तु गाय थी, नोट नहीं छपाता, दान पुण्य में दे ली जाती थी, वो बात अलग है। इसलिए जब सूरत आकाशवत हो गई, ये वशिष्ठ के पास थी। राज ने प्रयास किया हम डंडे के बल पर ले लें, डंडा ठोक ठाक के थक गए, पाए नहीं। ये तो जिसका संयम सदा उसके पास है, जो ही भजन करेगा वो पा जाएगा, अन्यथा असंभव। इसलिए गोमा ने मन से इंद्रियां जहां संयम साथ जाओ मिल जाओगे, मिले अवश्य मिलेगा। कबीर इसी आशय को प्रस्तुत करते हैं, जहां सूरत आकाशवत हुई तो गगन मंडल में, इंद्रियां जब संयम सद गया मन सहित गोबियानी, गोमा ने ऐसे संयत इंद्रियों के अंतराल में से ईश्वरीय विभूतियां प्रसारित तो होने लगी। वो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वो प्रसारण मिलने लगा। और वो जो प्रसारण मिला तो हृदय के अंतराल में माही माने भीतर, माही में दही जमाई जी, और माही माने भीतर हृदय में ही ध्यान रूपी दही में जमावट आ गई। ध्यान के जमते ही माखन माखन संतों ने खाया, उसकी महिमा रूपी माखन तो संतों ने खा लिया। भगवान के ध्यान में और साक्षात्कार होने में जो महिमा प्राप्त प्रसारित होती वो तो संतों ने ही सेवन कर लिया, वही जानता जिसके सामने वो घटित होता है। छाछ जगत व्यपरानी, और लेकिन उसकी शीतलता पूरे संसार को ठंडक पहुंचाती रही अनादि काल से, उसके द्वारा ही भविष्य की आने वाली पीढ़ियां अपना रास्ता प्रशस्त करती आई है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो समाज भ्रष्ट हो जाएगी, समाज वर्ण संकर हो जाएगी, मैं इस समाज का हत्यारा बनूं। क्यों? कि महापुरुष जो प्रमाण कर जाता है भविष्य में आने वाली पीढ़ियां ये समाज उसी का अनुसरण किया करती है। तो महापुरुष जो प्रमाण कर जाता है समाज उसी का अनुसरण करता है, और उसी साधना पथ पर अग्रसर होता है और ईश्वर पद का भागी होता है। तो छाछ जगत उन महापुरुष की साधना पद्धतियां जो छोड़ जाता रिकॉर्ड, छाछ जगत व्यप रानी, उसकी शीतल छाछ पूरा जगत व्यवहार में लाता है, उसमें किसी की बपोती नहीं होती। वो मनुष्य मात्र के लिए समान ही प्रसन्न करने वाले होते हैं, शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। तो छाछ जगत व्यप रानी हो जी, सुनता है गुरु यानी गगन में, भजन जागृति सदगुरु से। गुरु जो उससे जिससे वो ज्ञान जागृत है और जिससे साक्षात्कार है, आवाज हो रही झीनी झीनी, आकाश में वहीं रहने के लिए घर भी मिला, वहां बगैर तलैया के पानी भी मिला। तो बिनु धरती विनु धरती एक मंडल दिसे, ओ विनु धरती एक मंडल दिसे, बिनु सरोवर जो पानी रे, वहां आकाश में कहां जमीन, बगैर धरती के एक मंडलाकार स्थान दिखाई पड़ा, एक ठहराव दिखाई पड़ा। एक शब्द कबीर कहता, छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी, आकाशी में घर बना के वहीं रुक जाओ। मनुष्य वास्तव में वहीं रहता है जहां उसका मन रहा करता है। जब सूरत एक बार आकाशवत हो गई, लौट के पृथ्वी पर नहीं आती, वहीं वो इस लोक से अच्छा स्वाद और अच्छी रहनी और अच्छी शांति पा जाता तो क्यों लौट के आएगा। वहां एक ठहराव मंडल दिखाई पड़ा, रहने की जिस स्थान दिखाई पड़ा, ओ विनु सरोवर जो पानी, सरोवर तो है ही नहीं, पानी दिखाई पड़ा। ब्रह्म पीयूष मिलने लगा। पानी दो प्रकार का होता है सृष्टि में, एक ब्रह्म पीयूष जो आत्मा की तुम्हारी निजी खुराक है, दूसरा विषय रूपी बारी जो जीव आत्मा कितना भी भोगे फिर वो आगे कुछ और दिखाई पड़ेगा, तृप्त कभी नहीं होता। तो गोस्वामी जी ने निर्णय दिया है कि ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पेशो रस पावे तो कत झूठ विलो की विषय रस मन कुरंग जो धावे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पेशो रस पावे, कदाचित वो रस प्राप्त कर ले तो कत झूठ अनित्य नश्वर विलो की विषय रस मन कुरंग जो धावे। मन मिर्गी की तरह भला क्यों उसके पीछे दौड़ लगावे। रेगिस्तान में पेड़ बहुत कम होते हैं, यहां से चुनार भर में आपको 10-12 पेड़ मिल जाएंगे। बाड़मेर जैसलमेर अरब ये घने रेगिस्तान जहां है 2-4-6 पेड़ मिल गए, छोटी छोटी झाड़ियां, प्राणधारी जितने भी जीव है उन झाड़ियों में छिपे रहते हैं। जेठ के महीने में सूरज की सीधी किरणें जब रेत पर पड़ी तो बालू तप गई, 4-5 फीट ऊंची भाप की लहरें चलने लगती ऐसे ऐसे ऐसे, तो मिर्गे सोचते हैं नदी बह रही है, पानी का बहाव अच्छा दिखाई पड़ने लगा। तो झाड़ियों में से निकल के दौड़ लगाता, सोचता पहले पी लूं प्यास बुझा लूं फिर आके बैठूंगा। जहां लहर उठती वहां गर्मी और भी ताप ज्यादा होता है, आया तो और भी झुलस गया, तो दूसरी ओर देखा तो उधर भागा, उधर भी और झुलस गया, तो तीसरी ओर देखा उधर भागा, फिर और दूसरी ओर देखा तो भागा, उलट के मर गया। इसका नाम है मृग तृष्णा का जल। तुलसी कहता है तोकत झूठ बिलो की विषय रस मन कुरंग ज्यों धावे। संसार में हमें आवश्यकता कदाचित कृपा हो जाती प्रभु, एक ट्रक और एक गाड़ी हो जाती, हो गया तुरंत दूसरी चेचे के लिए बयाना फेंक दिया, 2-4-10 हो गई तो बोले 2 गाड़ी और हो जाती तो ठीक रहा, 20-25 हो गई तो नींद हराम हो गई और फिर आगे बयाना फेंक दिया, और अंत में मरते समय अधूरी इच्छा छोड़ के गंगा लाभ नहीं होता ऐसा। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, हर एक लाभ दूसरे लोभ को जन्म देता है, तृप्ति कभी नहीं। अरे शरीर की भूख कम होती जाती है और मन के लोभ बढ़ता ही चला जाता है। समुद्र किनारे समुद्र ने एक बार ऐसी लहर मारा कि मार रतनी रतन, तो लोग दौड़ दौड़ के भरने लगे, सब तिजोरियां भर लिया, लॉकर भर लिया, रतन जीव के त्यों। एक आदमी खोपड़ी पा गया आदमी की, लगा भरने सब रतन भर गया, खोपड़ी आधी भरी नहीं, तो मनुष्य की खोपड़ी कबों ने भरी, ठीक है ना, वही खाली की खाली। हाँ तृष्णा, इसीलिए तो बिनु धरती एक, आकाश में सुन में जहां सूरत लगी धरती नहीं, लेकिन मनुष्य वहीं रहता जहां उसका मन रहता। एक मंडल से वहीं एक निवास स्थान मिल गया, सदा सूरत वहीं टिक गई। बिनु सरोवर जो पानी वो ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जल मिला, और गगन मंडल में हुई उजियारा, एक प्रकाश मिला। आकाश में तो सूर्य चमकता ही है, लेकिन न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस सहज प्रकाश रूप ज्योतिर्मय परमात्मा को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही, वो सहज प्रकाश स्वरूप है, जिनके तेज के एक अंश मात्र से सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, करोड़ों सूर्य जिनके सामने जुगनू के तुल्य है, वो ज्योतिर्मय परमात्मा जहां शून्य में सूरत लगी तो गगन मंडल में होई उजियाला, वो ज्योतिर्मय परमात्मा का ज्योति वो उजेला प्रसारित होने लगा, परमात्मा का उजेला प्रसारित होने लगा, हो गया भगवान का प्रकाश व्याप्त हो गया, उसने घेर लिया, जिसे जानना था उसी ज्योतिर्मय परमात्मा का आलोक जहां फैल गया। तो बोले गुरु मुख वाणी, सुनता है गुरु ज्ञानी, जो ज्ञानी गुरु जो सुन रहा था जो बोल रहा था, चेला भी बोले गुरुमुख वाणी, और गुरुमुख वाणी स्पष्ट होने लगी शिष्य के सामने। गुरु जब अपनाता गुरु ही बना देता, चेला कभी नहीं, शिष्य में भी वही प्रसारित हो गया। तो बोले गुरुमुख वाणी हो जी, लेकिन वहां तक की साधना तय करने में भजन किस विधि से किया जाता है, भजन की विधि सदा एक ही रही है, श्वास पर श्वास का जाप। तो ओ हम सो हम बाजा बाजे, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओ हम सो हम। गुरु महाराज कहें ओम का जाप कर, श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती नहीं है। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे कि सांस कब अंदर आई, क्या कहा, कब बाहर गई और क्या कहा, ये सिवाय नाम कुछ कहती नहीं। लेकिन जब तुम सुनते हो तो साए 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 सुनाई देती, क्यों, कि श्वास की निर्मल अवस्था से तुम इतने दूर भटक गए हो, इसलिए दूर की आवाज तो गोलमाल आती है। इस दूरी को कम करने के लिए तुम्हें नाम जपना पड़ेगा, बेखरी वाणी से, माला से, राम राम जो व्यक्त होती इसलिए बेखरी वाणी जपो, व्यक्त होती ओम 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 राम राम जपो, शिव शिव भी जपो, जो अभिमत हो जपो, सब एक ही भगवान को इंगित करता है। वैदिक काल में गीतोक्त समय में ओम, भक्ति काल में राम, समय समय पर भाषा भेद से बदलती आई, भगवान एक प्रभु को ही इंगित कर रहे हैं। नाम जपो, वेखरी जो व्यक्त होता है खूब झूम के जपो, संकीर्तन वगैरह उसी के अंतर्गत है, खूब कीर्तन करो। फिर आस्ते आस्ते जब थोड़ी मन में टिकने की क्षमता आई तो फिर मध्यमा, मध्यमा ने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते बैठ के जपो जाप, इस ढंग से करो, पास में बैठा उसको न सुनाई पड़े, तुम जाप भी करो सुनो भी। ये उच्चारण कंठ से होता है, शांत बैठ के कंठ से उच्चारण करो, हल्का जीभ का सहारा दो, जीभ से भी उच्चारण करो, लेकिन धीमा आहिस्ते करो। वो तेज था ये मध्य में, बस इतना ही फर्क है, वो ये जल्दी जल्दी होता रहेगा। और मन में टिकने की क्षमता आई तब फिर पश्यंती, पश्य माने देखना, ने जोर से जपो ना, आस्ते श्वास को देखो, मन को बाजू में खड़ा कर दो, श्वास कब आई कब गई इसको पहचानो, कब लौट के आई इसको समझो, बाहर कितनी रुकी इसको देखो, कब अंदर गई इसको पहचानो, अंदर कितनी रुकी इसको जानो, कब लौट के आई इसको देखो, तीन चार बार। जब मन देखने लगे तो चिंतवन से नाम ढाल दो, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओ हम ओम ओ मैं, 25-50 नाम के बाद एकाध बार सो हम, ताकि मन की चाल बदल जाए, उच्चारण खत्म हो जाए, दोनों का मतलब एक ही है। और फिर सो माने वह परमात्मा, एम माने आप स्वयं, ओ माने वह परमात्मा, एम माने आप स्वयं, दोनों का मतलब एक ही है। आजकल सोम शब्द थोड़ा बदनाम हो चुका है, घर छोड़ा 4-6 महीना थ्योरी स्टडी किया तब तक साधक, थ्योरी स्टडी कर लिया, थ्योरी समझ में आ गया, व्यक्त करते बन गया तो सिद्ध, मिल गया भगवान, कहा करो अहम ब्रह्मास्मि, एक ऐसी कुछ रूढ़ी फैल गई है जिसका मतलब कुछ नहीं होता है, ये तो वो ऐसा ही है बैठे बैठे जीने का, क्या हो गया सारा हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। एक बेवकूफी किसी खड़ी हो गई है, भगवान कृष्ण इसको अंधविश्वास कहते हैं। हट से इंद्रियों को रोक कर मन के विषयों से चिंतन करता हूं दम्बाचारी पाखंडी, वो प्रश्न अलग। तो जहां ये जपो चिंतवन से नाम ढाल दो, जो मन जब देखने लगे श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम जपते तो राम है, कुछ दिन तो ढालना पड़ेगा। एक भी श्वास हमारी जानकारी के बगैर व्यर्थ न जाने पाए, कुछ दिन में आपको ढला ढलाया नाम मिल जाएगा। क्यों कि श्वास तो पहले से नाम कह ही रही थी, हम इसके पास थे नहीं, हम पता नहीं कहां भटक रहे थे, हमारा मन कहां भटक रहा था, वो भटक के करीब आया तो फिर ढला ढलाया नाम ढल जाएगा अंदर, फिर सुना भर करे, मन को खड़ा कर दो सुना भर करे, कब श्वास आई क्या कहा, सिवाय नाम के और कुछ नहीं कहेगी, वो सुनाई पड़ने लगेगा, सुनने में सक्षम भी हो जाओगे, तो ओम 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 लो लग जाए, श्वास में सारी वृत्ति सिमट के प्रवाहित हो जाए, श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए, वृत्ति तेल धारावत खड़ी हो जाए। तेल जब गिरती है तो धारा धारा गिरती है, पानी की तरह टप टप नहीं गिरती। जब सूरत सांस में खड़ी हो गई तो ओहम सोहम बाजा बाजे, रिनक धिनक धुनी अपने से उठे, इसको कबीर ने बाजा की संज्ञा दी। आस्ते आस्ते सूरत इतनी सूक्ष्म हुई कि तीनों गुण कूटस्थ हो जाए, न सात्विक संकल्प उठे, न राजसी उठे, न तामसी, तो त्रिकुटी धाम सुहानी। तीनों गुण जब कूटस्थ हो गए तो धाम, धाम माने आपका निवास आवास घर ठिकाना मिल गया आपको। तीनों गुण कूटस्थ हो गए, ने सात्विक गुण टांग पकड़ के खींचता है, भगवान कैसे रहनी कैसी, न ये चिंतन आता है, न राजसी गुण कुछ भोग विलास ढूंढ रहा है, न तामसी गुण आलस्य निद्रा वाला पाठ पढ़ाता है। तीनों शांत हुआ, प्रकृति से संबंध टूट गया, तो धाम माने भगवान, भगवान की शांत सम मुद्रा मिल गई, तो वो शांत सम स्थिति मिल गई, तो त्रिकुटी धाम बहुत सुहावना है, वो त्रिकुटी धाम सुहानी रे। इसमें भजन कैसे किया जाता है, निड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी, दाहिने स्वर को ईड़ा बाई को पिंगला, और दोनों जब सम चलने लगे तो सुख मना, मन सुख पूर्वक श्वास में प्रवाहित हो जाए तो इसका नाम है सुख मना नाड़ी। ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, जब सुन्न हो गई, ने भले उद्वेग ने बुरे, तो सुन्न हो गई, सम चलने लगी, सुन्न हो गई तो शून्य ध्वजा फहरानी, या सुन हुई तो भजन पूर्ण हुआ, शून्य ध्वजा फहरानी, शून्य ध्वजा फहरानी, शून्य होते ही भजन की ध्वजा फहराने लगी। हो जी सुन लो जी, बस इतना ही करना है आपको। अंत में कबीर निर्णय देता है, सर्टिफिकेट मिल गया भगवान से, कह तो कबीर सुनो भाई साधुओं संतों, सुनो और ध्यान भी दो, जानी अगम के बानी रे, अचिंत्य है अगोचर है, चित और चित की लहर से परे, बुद्धि और विचार से परे, गो माने मन से इंद्रियों से अतीत, मनुष्य के पास जो यंत्र पकड़ने के जानने के उनसे अतीत है, इसलिए वो अगोचर है, अचिंत्य है, अगम्य है, इनकी गम पहुंच से परे इसलिए अगम्य है। जानी अगम के बाणी, अर्थात उस परमात्मा की बाणी है, अगम्य है, अचिंत्य उसकी बाणी है ये। और ये बाणी आवाज भर नहीं सुनाई देती, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। देने अरो रैन नजर भर देखे, अजर अमर वो निशानी। दिन और रैन नजर भर देखे, ये आंखें तो देखती ही नहीं, दृष्टि भी अंदर ही की है। अहर निस नजर भर देखे, वो अचिंत्य अगोचर अगम की बाणी रात दिन नजर भर देखे, आंखों के सामने सदैव छाई रहती है। अजर है अमर है, अजर अमर वो निशानी। जो अजर है अमर है, अजर है अमरत्व प्राप्ति की यही निशानी है, अंतिम प्राप्ति की यही पहचान है। जिन्ने नन साहिब बसे, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप चली जाए। तो दिने रु रैन नजर भरी देखे, अजर अमर वो निशानी। तुम अजर हो अमर हो इसकी यही पहचान है, यही शिनाख्त। एक पंडित जी थे पुरोहित जी, उनकी जजमानी चारों तरफ थी, 25 गांव में। और एक यादव परिवार भी शिष्य ही था। तो एक 60-65 साल का यादव, उससे कहा क्यों भगत, लड़कों बच्चों ने कारोबार संभाल लिया? बोले सब संभाल लिया गुरुजी, मैं खाली लाठी लेके 4 बिरहा गा लेता हूँ छुट्टा, और मेहमानी में घुमा करता हूँ, तुम हमारे साथ रहो। घोड़ी बांध छान दिया कर और पोथी 15 रख दिया कर, वो चल दिया। गुरुजी और चेला की उम्र एक ही थी, गुरुजी लटपटाए आए थे, बुजुर्गी थी। वो यादव तो 60 पर पाठा, 60 वर्ष में तो जवानी आती है। जन्म भर भैंस चराया, 4 किलो दूध पिया, मक्खन खाया, तो पीछे लाठी लेके चला कर। तो गुरुजी ने सोचा ये भैंस गाय जन्म भर चराया है, कुछ न कुछ चोरी करके भैंस गाय को जरूर दूसरे का खेत खिलाया होगा, चोरी करने का आदत तो इसकी है, आतलपक तो जरूर है, दूसरे का कुछ चुराने का अभ्यास आदत तो इसकी है, कुछ समझा दूं। देख गिरी चीज नहीं उठाना चाहिए। यात्रा आगे गई पहाड़ के उस पार, रास्ते में घोड़ी के पीछे कंबल रखा हुआ था, हिलने डुलने से वो खिसकने लगा कंबल और गिर गया। और दूसरे गांव में जब तख्त पर आसन लग गया, 15-50 भगत लोग बैठ गए, तो बोले बेटा ठंडी बढ़ रही, जरा कंबल तो ला। बोले गुरु महाराज यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ की ढलान पर गिर गया। बोले तुमने उठाया क्यों नहीं? बोले आप ही ने तो कहा था कि गिरी चीज नहीं उठाना चाहिए। बोले अरे तुम बहुत भोला भाला है, घोड़ी से गिरे उठा ले, दूसरे की गिरी ने उठावे। वो यात्रा आगे चली दूसरे गांवों की ओर, तो रास्ते में घोड़ी ने 4-5 बार लीड किया तो उठा के साफी में बांधता चला गया। और जब सफेद चद्दर बिछ गई, तखत पर गुरुजी बैठ गए, 150 भगत भी भाविक आके बैठ गए सामने, तब वो गठड़ी उठा के खोल के तखत पर डेरी लगा दिया। बोले ये क्या है? बोले गुरुजी घोड़ी से आज यही गिरा। तो बोले अरे हद कर डाला तुमने, तो फिर लिस्ट बना दिया। बोले देख वस्तु गिरे उठा लिया करो, और सुबह 4 नहाया करो, 10 माला जाप किया करो, और घोड़ी बांध करो, शाम को ऐसे करो, दोपहर में ये काम, इतना बजे ये काम करो, शाम को भी बैठ के भजन किया करो, स्नान जरूरी है, और 15-25 पॉइंट लिख के दे दिया। अब यदि इस लिस्ट के बाहर जाओगे तो तुम ही रहोगे या हम ही रहेंगे? बोले गुरु महाराज क्षमा करें, लिस्ट के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। लड़कों से पढ़वा के लिस्ट को सही कर लिया, पहले लाइन का ये मतलब, बीच का ये मतलब, अंतिम का ये मतलब। 4-6 महीना बीता, एक बार पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहे थे पगडंडी से इधर के गांव की ओर। पहले पगडंडियां थी पर सड़कें पक्की तो थी नहीं, तो ढलान से चले आ रहे थे। एक चीता निकला झाड़ियों में से, घोड़ी के सामने से निकल के क्रॉस किया। चीते को देखते ही घोड़ी दोनों पांव पर खड़ी हो गई। गुरुजी गिर गए पहाड़ की ढलान पर, सररर खिसक के 25-30 साथ नीचे चले गए। ये दो पहाड़ों की चट्टान के बीच में एक झाड़ी में उलझ गए, कटीली झाड़ी में रुक गए। वहां पर कांटे गड़ गए, घोड़ी इधर उधर भग गई। बोले बेटा जल्दी कर, प्राण तो गए, निकाल निकाल। तो बोले गुरु महाराज थोड़ा धैर्य धारण करें, लिस्ट देख लेने दे, लिखा हुई तो निकाल, अब नहीं तो वहीं भजन करो। तो बोले ससुराल लिस्ट फाड़ के फेंक दे, पहले हमें निकाल। तो पुराण में लिखा, वेद में लिखा, महाभारत में लिखा, कुरान में लिखा, बाइबिल में लिखा, लिस्टे देखते रह गए लोग। लेकिन ईश्वर पथ में ये लिस्ट कोई काम नहीं देती। आधी दूरी तक जब तक भजन नहीं जागृत हुआ, सदगुरु नहीं मिले, तब तक के लिए है भजन। जो जागृति है उसके बाद में लिस्ट रोज उतरा करती है, साधक पढ़ता है उसी के अनुसार वो चलता है। गुरु महाराज को आदेश मिला कि कल दूध मत पीना, पी लिया तो लिस्ट तो आ गई। वेद में लिखा था क्या, शास्त्र में लिखा किसी में? पी लिया तो भगवान ने उठाया, बोले चलो यहां से जाओ। साधक के लिए लिस्ट क्यों, कि उसकी साधना के संस्कारों की रील के अनुसार, उसके भजन की चाल के अनुसार रोज ही भगवान उसका निर्णय देंगे। रोज साधना आगे बढ़ती रहती है और वो जो आवाज है, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। ज्ञानी गुरु ही सुन पाता है, भजन एक जागृति है। और साधना करके साधक काफी दूरियां भी तय कर लेते हैं। देव ऋषि नारद देव ऋषि पद भी पा गए थे, लेकिन थे अधूरे। गर्व इतना था कि अपने में उनको जमीन पे पांव ही नहीं पड़ रहा था, देव ऋषि नारद का। सांड और साधु हरे भरे खेत की ओर चल देते, उपड़ोड़ देखेंगे उधर ही महात्मा लोग बढ़ जाते हैं, क्यों चाय का दूध की मिलेगी, पाउडर वाली नहीं मिलती वहां पर। सांड भी दिन भर पगुराता रहेगा, गांव में बैठा रहेगा, रात हुई 12 बजा तो चल देगा गांव छोड़ के, कहीं खा पी के चलाएगा हरा भरा खेत। नहीं गौ सांडों की आदत नहीं देखते हो? जब भगवान द्वारकाधीश हो गए तो वहीं पहुंच गए, नारद पहुंचा करें, बराबर पहुंचे, भगवान जगह धुला दिया करें। जब नारद विदा हो जाएं तब, एक दिन नारद जी की निगाह पड़ गई, मैं जहां बैठता हूं वही जगह क्यों धुलाते हैं? घूम घूम के तो जल्दी जल्दी आने लगे, घूम घूम के देखने लगे कि जगह तो वही धुलाई जा रही जहां मैं बैठता हूं। जब नारद देखने लगे तो भगवान कहे 4 बाल्टी पानी तो और लाओ, और पानी डालो, और झाड़ू लगाओ। तब नारद लौट पड़े, बोले प्रभु जहां मैं बैठता हूं वही जगह क्यों धुलाई जाती है? बोले नारद जी अशुद्ध हो जाती इसलिए धुलाई जाती। बोले भगवान संत बैठते हुए जगह तो पवित्र होती है, विवेकी संत बसे जई देश, रिद्धि सिद्धि जहां टहल करते हैं, दुख न रहत लवलेश, वहां रिद्धि सिद्धि टहल करती है, लवलेश भी दुख नहीं रहता। और मैं बैठता हूं जगह अपवित्र कैसे हो जाती है? बोले नारद जी आप कहते हो बात बिल्कुल सच है, किंतु आप उतने बड़े संत नहीं है। तब और भी नारद गर्म पड़ गए, बात क्या है भगवान, कमी क्या है? बोले तुम निगुरे हो। नारद बोले भगवान मैं और किसे गुरु बनाऊं, आप बन जाइए। बोले नारद तुम्हारा गुरु मैं तो नहीं हो सकता। तब बोले किसी सदगुरु का परिचय दीजिए। बोले ये हो सकता है, बड़े सवेरे गंगा किनारे चले जाओ, माला लेके खड़े हो जाओ, प्रथम जो व्यक्ति आवे वही तुम्हारे सदगुरु है। नारद खड़े हो गए माला लेके, बिना टुनटुनाते नारायण नारायण करते, देव ऋषि का पद तक हमने प्राप्त कर लिया, फिर भी हम अभी अशुद्ध के अशुद्ध हैं। आज महापुरुष मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, न जाने कितनी दिव्य मूर्ति होगी। ओ भाग्य हमारा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे। इतने में एक मल्लाहुआ निकला उधर से केवट, बगल में जाल दबाए और चार मछली पीठ पीछे लटकाए। नारद जी उछल के 10 कदम पीछे हट गए, बोले ये ससुरा कहां से चलाया। फिर सोचे नदी किनारा केवट नहीं आएंगे तो आएगा कौन, गुरुदेव आते होंगे, कोई नहीं आया। 8 बजे तक खड़े रहे, फिर मुंह लटका के खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे नारद जी इतनी उदासी का कारण क्या, कोई नहीं आया। बोले हाँ भगवान आया था, वो तो ससुरा केवट था। बोले ओ चूक गए, आज एक चांस और, यदि आज चूक गए तो एक जन्म और लेना पड़ेगा और गुरु यही मिलेंगे। गुरु एक स्थिति का नाम है, गुरु चमड़ी का नाम नहीं, वेशभूषा में नहीं। तब जाके फिर खड़े हुए, बोले हे भगवान कहीं वो मल्लहुआ न दिखाई पड़े। कृपा करना भगवान, गुरुदेव भेज देना, कहीं वो केवटा नहीं दिखाई पड़े। खड़े थे माला लेके, इतने में ठीक समय पर वही केवट दिखाई पड़ा। तो बोले माला डालें कि एक जन्म और लें तब डालें, गुरु तो यही मिलने हैं। तब साहस करके आगे बढ़े और माला डाला। वो बिगड़ खड़े हुए महापुरुष, बोले अरे देव ऋषि नारद, आपको किसने भरमा दिया, कौन है आपके समान दुनिया में, किसने बहका दिया आपको, देख नहीं रहे हो हमारा वेशभूषा चाल ढाल। बोले भगवान अब ने भरमावे, कृपा करें। देखा कि नारदुआ नहीं पिंड छोड़ेगा, अपना भी लिया। तो सदगुरु ये तो एक उदाहरण मात्र है। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए एक जाज है। सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो, सन्मुख सीधी अनुकूल अनुकंपा वायु, वायु ही पुराने जमाने में नाव को पार लगाती थी। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार माने केवट, कैप्टन कर्णधार सदगुरु, सुदृढ़ कर्णधार, नाव न तो डूबे न लड़खड़ाए न देने बाए जाए, सीधी लक्ष्य पर उस पार पहुंचा दे, ऐसा सुदृढ़ कर्णधार अर्थात केवट। सदगुरु ही सुदृढ़ कर्णधार है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये साज संसार में दुर्लभ है। नर्तन का मिलना, मानव तन का मिलना, भगवान की अनुकूलता, सदगुरु की उपलब्धि, ये दुर्लभ है साज। कदाचित सब सुलभ हो गया, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, शोकृत निंदक मंद मते आत्माहन गति जाई। वो कृत निंदक करने से कतराता है, कल पर टालता है, मंद मति बुद्धि का बहुत हल्का है, अपनी ही आत्मा का हत्यारा है। इसलिए सब लोग चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते शौच जाते पानी पीते खुरपी चलाते सर्विस करते, तुम जाग रहे हो सोए नहीं हो, तो नाम का जाप चलता रहे। नाम जाप करने के लिए कोई जगह पवित्र नहीं है, हर जगह पवित्र है। और फूल बिछा के बैठ जाओ, अत्र छिड़ के बैठ जाओ, मन में श्रद्धा नहीं समर्पण नहीं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बे नीरा, आंखों में अश्रु नहीं श्रद्धा नहीं समर्पण नहीं, तो जगह अपवित्र है। इसलिए श्रद्धा पूरी हृदय से नाम का जाप करो, और इस तरह उठ जाने पर भजन की जागृति का जहां तक सवाल है, ये सदगुरु से ही होता है। तो प्रथम भगत ही संतन कर संगा, जाने अनजाने में भी जो संतों की संग में बैठे हो, भक्ति के प्रथम चरण पर तो सब लोग भगवान ही ढकेल के पहुंचा देते हैं, खड़े ही हो। दूसरी अतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तुलसी जाहि मुखन ते धोके उन निकले राम, ताके पग की पा नहीं, तुलसीदास के चाम डोके से भी राम निकल जाए। तुलसी कहते हैं उस भक्त शिरोमणि के चरणों की पादुका बन जाए हमारे चमड़े की। इसलिए नाम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते श्रद्धा एक प्रभु के प्रति समर्पण के साथ नाम चलता रहे। संपूर्ण विधि जानने के लिए गीता यथार्थ गीता आपका धर्म शास्त्र है, वो जरूर सबके घर में बच्चों के वस्ते में माताओं के चूल्हे के पास